بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتین کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہے ایمان لانے والو، بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں، اور ٹوہ میں مت رہو، اور نہ تم میں سے کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی نندا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی، اور ایشور سے ڈرتے رہو، نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا، اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज शनिवार है, आबान की 15 और नवंबर की 6 तारीख। श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से पहले, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। तो पत्र व्यवहार के हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। श्रोताओं, हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सबसे पहले आप सदा की भांति देश विदेश के समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम नया सवेरा, और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा ईरान भ्रमण। श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप रेडियो तेहरान से कुछ ही क्षणों में समाचार सुनेंगे। और अब आप मोहम्मद मेहदी और मरियम महदादी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिम वियना वार्ता में विशिष्टता लेने का प्रयास न करे। ईरान ने ऐलान किया है कि 60% तक ग्रेड तक संवर्धित यूरेनियम का उसका भंडार 25 किलोग्राम तक पहुंच गया है। इसराइली मीडिया ने खबर दी है कि इसराइल 2.5 लाख मिसाइलों के निशाने पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका को पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना दिया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
विदेश मंत्री ने कहा है कि वियना वार्ता में प्रगति के लिए जरूरी है कि पश्चिम और अमेरिका परमाणु समझौते से हटकर मांग न करें और वास्तविकता पर आधारित दृष्टिकोण अपनाएं। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने आज अपने रूसी समकक्ष से टेलीफोनी वार्ता में ईरान के परमाणु समझौते के संबंध में रूस के रचनात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि ईरान वार्ता में गंभीर है और किसी को इस बात में संदेह नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि समस्त पक्षों को अपने वचनों के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए, इस बात में भी किसी पक्ष को संदेह नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के ताजा प्रतिबंधों की ओर संकेत करते हुए कहा कि यद्यपि इस्लामी गणतंत्र ईरान को अमेरिकी पक्ष की नीयत पर संदेह है, इसके बावजूद अगर अमेरिका पूरी तरह अपने वचनों के प्रति कटिबद्ध हो जाए तो परमाणु समझौते से हटकर मांग न करे तो इस्लामी गणतंत्र ईरान भी अपने समस्त वचनों का पालन करेगा। इसी प्रकार विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने परमाणु ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA के साथ रचनात्मक सहकारिता की ओर संकेत किया और बल देकर कहा कि IAEA के महासचिव को राजनीति से प्रेरित दृष्टिकोण अपनाने से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान IAEA के साथ सहयोग जारी रखेगा। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भी इस टेलीफोनी वार्ता में परमाणु समझौते को जीवित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि समस्त पक्षों उनमें सबसे पहले अमेरिका को अपने समस्त वचनों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि मॉस्को हमेशा परमाणु समझौते के संबंध में अमेरिका की विनाशकारी कार्यवाहियों के बंद किए जाने पर बल देता है।
ईरान ने ऐलान कर दिया कि 60% ग्रेड तक संवर्धित यूरेनियम का उसका भंडार 25 किलोग्राम तक पहुंच गया है। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रवक्ता बहरूस कमालवंदी ने कहा कि अब तक 25 किलोग्राम का भंडार तैयार कर चुके हैं। गत अप्रैल महीने में IAEA ने पुष्टि की थी कि ईरान ने 60% ग्रेड तक यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया है। ईरान के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये विषय चर्चा में आ गया है कि अल जजीरा और रायुल योम जैसे मीडिया संस्थानों का कहना है कि ईरान का ये ऐलान दरअसल पश्चिमी देशों को खुली चुनौती है। बहरूस कमालवंदी ने गुरुवार को ऐलान करते हुए बताया कि 20% के ग्रेड तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार 210 किलोग्राम है।
इसराइली समाचार पत्र इसराइल हियम ने इस बात की पुष्टि की है कि अतिग्रहित भूमियों को लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की 1,00,000 से अधिक मिसाइलों से खतरा है और हालात को सही करने के लिए इसराइल को लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इसराइली समाचार पत्र ने अपने एक लेख में लिखा है कि वर्ष 2006 में होने वाली जंग एक जागरूकता की आवाज थी और इसराइल समझ गया कि उसे जागना चाहिए। इसी प्रकार इस समाचार पत्र ने बल देकर लिखा है कि आज इसराइल को हिजबुल्लाह के 1,00,000 से अधिक मिसाइलों और गजा पट्टी के अंदर से 10,000 मिसाइलों और रॉकेटों से खतरा है और इस वास्तविकता को इसराइल को समझना चाहिए कि उसके पास मिसाइलों को विफल बनाने वाला जो सिस्टम है उसके अंदर इन मिसाइलों को विफल बनाने और इसराइल की सुरक्षा की क्षमता नहीं है। अभी कुछ समय पहले इसराइल के एक अन्य समाचार पत्र मारियो ने लिखा था कि सुरक्षा आंकड़े बता रहे हैं कि ईरान के नेतृत्व में इसराइल फिलिस्तीनी गुटों के विभिन्न प्रकार के 2,50,000 से अधिक मिसाइलों के निशाने पर है। इसी प्रकार इस समाचार पत्र ने लिखा कि प्रतिदिन 3,000 मिसाइल इसराइल नगरों, बंदरगाहों, सैनिक हवाई अड्डों और शस्त्र भंडार की ओर फायर किए जाएंगे। इसी प्रकार इस समाचार पत्र ने लिखा है कि यह जंग निश्चित है परंतु उसका समय निर्धारित नहीं है और साफ साफ कहना चाहिए कि जिस तरह हालिया दशक में इराक, सीरिया, यमन और लेबनान में जंग तबाही का कारण बनी है उसी प्रकार की तबाही इसराइल की प्रतीक्षा में है और यह जंग इसराइली सरकार के अंत का कारण बनेगी।
इसराइल को अपने घटक पश्चिमी देशों में एक बड़ी नाकामी का मुंह तब देखना पड़ा जब फिलिस्तीनी अधिकारियों के लिए संघर्ष करने वाले संगठनों को आतंकी संगठन घोषित करने की तेल अविव की मांग को ठुकरा दिया गया। एसोसिएटेड प्रेस ने इसराइल का खुफिया एजेंडा नाम की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि इसराइल ने फिलिस्तीनियों के अधिकारियों के लिए काम करने वाले संगठनों को आतंकी संगठन घोषित करवाने के लिए बड़ी मेहनत की लेकिन इसराइली अधिकारियों के पास मौजूद साक्ष्य इतने कमजोर थे कि पश्चिमी सरकारों ने ये मांग स्वीकार नहीं की। समाचार एजेंसी ने बताया कि उसके हाथ इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी शेनबित की खुफिया रिपोर्ट लग गई है जो 74 पन्नों की है। यह रिपोर्ट गत महीने मई महीने में यूरोपीय देशों को भेजी गई थी जिसमें 6 फिलिस्तीनी संगठनों को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए तर्क दिए गए थे।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका को पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वर्तमान राष्ट्रपति की डेमोक्रेटिक पार्टी ने देश की समस्याओं का समाधान करने के बजाय अपना ध्यान रिपब्लिकन्स पर केंद्रित कर रखा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को जो बाइडेन और उनकी पार्टी की कड़ी आलोचना की थी। ट्रंप ने कहा कि देश के डेमोक्रेट नेता अपने समय का 99% भाग रिपब्लिकन्स के विरुद्ध प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में उनके पास देश को आगे बढ़ाने और उसके विकास के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स नेता अगर अपनी ऊर्जा का केवल 50% ही चीन, रूस, ईरान और यूरोपीय संघ से मुकाबला करने में लगाएं तो हम फिर अपनी वैभवता को हासिल कर सकते हैं।
अमरीकी नौसेना ने उस पनडुब्बी के अफसरों को नौकरी से निकाल दिया है जिसकी दक्षिणी चीन सागर में दुर्घटना हुई थी और 15 नौसैनिक घायल हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पनडुब्बी एक पहाड़ से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी। इसके 3 वरिष्ठ अधिकारियों की नौकरी निकाल दिया गया है। USS कोने टिकट पनडुब्बी पिछले महीने एक चट्टान से टकरा गई थी जिसकी वजह से उसे एक हफ्ते के लिए पानी की सतह पर आना पड़ा और फिर उसे प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम द्वीप ले जाया गया।
यमन में मारी प्रांत के केंद्रीय नगर मारी पर नियंत्रण के लिए यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों के साथ सऊदी गठबंधन की लड़ाई बहुत तेज हो गई है। इस बीच जहां सऊदी युद्धक विमानों ने यमनी सेना और स्वयंसेवी फोर्सेस के ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं, वहीं यमनी सेना ने जवाब देते हुए सऊदी अरब के कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं।
इराक की राजधानी बगदाद में हालिया संसदीय चुनाव के नतीजों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प में कम से कम 3 प्रदर्शनकारियों की मौत और 160 से अधिक घायल होने की घटना पर व्यापक रूप से प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। हादी अल आमिरी के नेतृत्व वाले अलफतह अलायंस ने शुक्रवार की रात एक बयान जारी करके कहा कि प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर उपस्थित हैं, कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज की चर्चा में हम अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को लाखों डॉलर के हथियार बेचने, रूस में इस्लाम का प्रचार करने वाले धर्मगुरु के स्वर्गवास और कश्मीर में कोरोना की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। अमरीका ने फिर सऊदी अरब को लाखों डॉलर के मिसाइल बेचने का फैसला किया है। इस फैसले पर विभिन्न ढंग से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक रिपोर्ट लेकर उपस्थित हैं अख्तर अब्बास।
ग्रेट प्लेन, $3.8 बिलियन।
एक व्यक्ति ट्रंप का आलोचक था जिसने उस समय अमरीका और सऊदी अरब के बीच हथियारों के समझौते की आलोचना की थी।
This war has to end.
जो बाइडन, यहाँ तक कि उन्होंने व्हाइट हाउस पहुँचने के बाद यमन की जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब वो सऊदी अरब को हथियार बेचने का समर्थन नहीं करेंगे और संयोग से खाशुकजी की हत्या की जांच अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति के आदेश से जारी हुई। लेकिन अब हैरान करने वाले तरीके से पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों की ओर ये मामला पलट गया है।
I look forward to building on what we've accomplished.
To assist the Saudi Arabian government in the defense of its homeland.
We deeply appreciate the cooperation of the Saudi government.
Crown Prince is interested in peace.
वो सऊदी अरब को 280 मिसाइल बेचना चाहते हैं, $650 मिलियन के। ये उनके व्हाइट हाउस में दाखिल होने के बाद अमेरिका से सऊदी अरब के लिए पहली सैनिक खेप है। अलबत्ता कांग्रेस को पहले सहमति देनी होगी। युद्ध विरोधी कुछ कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कुछ करना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। सऊदी अरब 7 साल से यमन पर हमले कर रहा है। इन मिसाइलों के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो दलदल से नहीं निकल सकेगा। लेकिन 10,000 बच्चे वहां मारे गए और घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। यमन दुनिया में सबसे बड़ा मानवीय संकट बन गया है।
With women and children.
अमेरिकी मुसलमानों के संघ के प्रमुख पॉल एडम का कहना है, अमेरिका सऊदी अरब की मदद कर रहा है, जबकि सऊदी अरब ने न केवल युद्ध अपराध किया है बल्कि यमन में जनसंहार किया है। सऊदी अरब से बाइडेन की नाराजगी का दौर खत्म हो गया है। कांग्रेस के नाम अमेरिका की रक्षा सहयोग कमेटी के पत्र में सऊदी अरब को दोस्त देश के रूप में याद किया गया है और सीनेटर से सहमति व्यक्त करने की मांग की गई है, क्योंकि इन मिसाइलों की बिक्री अमेरिका की रक्षा और विदेश नीति को मजबूत करती है। अलबत्ता मीडिया खामोश नहीं रहा और उसने व्हाइट हाउस की आलोचना तक की, लेकिन संभव नहीं है कि उनकी ये आलोचना समझौते को प्रभावित करेगी। कामरान नजफजादे, IRIB न्यूज, न्यूयॉर्क।
दशकों तक रूस में इस्लाम की सेवा करने वाले वरिष्ठ धर्मगुरु के स्वर्गवास के संबंध में पेश है एक रिपोर्ट, जिसे स्वर दिया है अहमद अब्बास ने।
दस्मिलोस्तिविसा अल्लाह नद एतिम पकोइनम उचोनम।
मॉस्को में बेहद लोकप्रिय धर्मगुरु की फातिहा खानी मोहम्मद अली मोसिली, जो आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी के प्रतिनिधि थे, वर्षों तक अजरबैजान और रूस में इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम और उनके परिजनों की शिक्षाओं को लोगों के बीच फैलाते रहे। उनका लोगों के बीच बड़ा सम्मान था। मॉस्को के इस्लामिक सेंटर में उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जनाब मुसिली ने 30 साल बड़ी निष्ठा के साथ काम किया। मॉस्को के इस्लामिक सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में ईरान और इराक के राजदूतों ने भाषण दिया। कार्यक्रम में श्रीमान मोहम्मद अली मुसिली के परिवार के लोगों और उनके सैकड़ों चाहने वालों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई, जिसमें इस महान धर्मगुरु के संघर्ष की तस्वीर पेश की गई। स्थानीय धर्मगुरु ने कहा कि जनाब मुसिली हमेशा धर्मगुरुओं की मदद करते थे और पैगंबर इस्लाम और उनके परिजनों से गहरी श्रद्धा रखते थे। ये महान धर्मगुरु कैंसर के रोग से ग्रस्त हो जाने के बाद पिछले रविवार को तेहरान के एक अस्पताल में चल बसे। उनकी उम्र 75 साल थी। श्रद्धालुओं की भीड़ ने उनका अंतिम संस्कार किया और उन्हें इराक के पवित्र शहर नजफ में दफन किया गया। श्रीमान मुसिली के बेटे का कहना है कि हमारे पिता ने अपना पूरा जीवन इस्लाम को समर्पित कर दिया था और हमेशा उसी की सेवा में लगे रहते थे। मॉस्को इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर हुज्जतुल इस्लाम तहमासबी ने दिवंगत धर्मगुरु मुसिली को इल्म, अमल और अखलाक का आदर्श करार दिया और कहा कि उन्होंने बड़ी कठिनाइयां झेली ताकि शिया मत और पैगम्बर इस्लाम और उनके परिजनों की शिक्षाओं का हर तरफ प्रसार हो। हुज्जतुल इस्लाम मुसिली बड़े मेहनती और जुझारू धर्मगुरु थे और बड़े अच्छे उपदेशक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस्लाम धर्म के प्रचार और शिया मत की शिक्षाओं को रूस, अजरबैजान और अन्य देशों के लोगों तक पहुंचाने के लिए गुजार दिया। मॉस्को के इस्लामिक सेंटर से IRIB के लिए सैयद अली दाराबी की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। بھارت نیتت کشمیر میں کورونا یا کووڈ 19 کا پرکوپ پھر سے بڑھنے لگا ہے۔ سری نگر سے سپتے محمد حسن۔
جموں کشمیر میں کووڈ استھتی میں ایک بار پھر اچھال آیا ہے اور پرشاسن نے سری نگر کے وبھن چھیتروں میں کووڈ کو نینترن میں کرنے کے لیے مائکرو زونز بنائے ہیں اور لوگوں پر بل دیا ہے کہ وہ کووڈ ایس او پیز پر عمل کریں۔ سری نگر کے وبھن چھیتروں میں کووڈ کیسز میں بڑھوتری ہوئی ہے، جس کے بعد یہ نرنے پرشاسن نے لیا ہے۔ سری نگر کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وبھن اپائے ڈھونڈنے ہوں گے اور لوگوں سے بھی یہ میری بنتی ہے کہ وہ ساودھانی سے کام لیں۔ اس بیچ بھاجپا کے ایک ودھائک جس نے مسلمانوں کے ورودھ میں ٹپنی کی تھی، اگرچہ اسے پارٹی سے نکال باہر کر دیا گیا تھا، پرنتو گاٹھی کے وبھن دھارمک اور راجنیتک سنگٹھنوں نے جموں کشمیر پرشاسن سے مانگ کی ہے کہ اس ویکتی کی فوری طور پر گرفتاری عمل میں لانی چاہیے۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ کے ادھیکش حکیم احمد یاسین نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں سیکولر نظرے کے لوگ رہتے ہیں اور گاندھی جی کو بھی کشمیر سے ہی آشا کی کرن نظر آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر آپسی بھائی چارے کو توڑنے کے لیے جو شریانتر رچے جا رہے ہیں، ان کا توڑ کرنے کے لیے پرشاسن کو سخت قدم اٹھانے ہوں گے۔ اس اوسر پر انہوں نے کہا،
دیکھیے بدقسمتی ہے کہ ہماری جو پرمپرا جموں کشمیر کے لوگوں کی، خاص کر کشمیروں کی رہی ہے، انہوں نے ہم ہر وقت جو اقلیت کے لوگ ہیں ان کو تحفظ دیا، سیکولر کردار کو ہر وقت تقویت ملی، اور کہیں مراحل ایسے بھی آئے تو اس وقت یہاں کے لوگوں نے اور گاندھی جی نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر مجھے روشنی کی کرن نظر آئی، وہ جموں کشمیر، خاص کر کشمیر میں اس زمانے میں دیکھی گئی، اس وقت یہاں پر ہم نے سیکولر کردار کو محفوظ رکھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو آج کا یہ سٹیٹمنٹ میں سن رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی المیہ ہے، سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ سرکار نے اس کو اس وقت تک کیوں چھوڑا۔ اس کی جگہ بالکل جیل میں ہونی چاہے، اس کے خلاف باضابطہ ایف آئی آر ہونا چاہے، جو یہاں پر فرقوارانہ فسادات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ہماری پرمپرا اور اصولوں اور اسلام کے خلاف ہے، جن باتوں کا اس نے اظہار قابل مذمت ہے، قابل نفرت ہے۔ بچوں نے غلطی کی، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، کھیل کھیل ہی ہوتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ جوڑنا، اور وہ ایسا واقعہ ہوتے ہی سرکار حرکت میں آ گئی اور انہوں نے ان کے خلاف ایف آئی آر دیا اور ان کے خلاف ان کو جیلوں میں پابندی سے لاک کیا، بند کیا۔ اور بدقسمتی ہے، اتنا غلط سٹیٹمنٹ، اتنا شرنگیز سٹیٹمنٹ دینے کے باوجود بھی سرکار ابھی اس بارے میں خاموش ہے۔ ہماری ان سے گزارش ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں، مگر یہ تو ضرور کہیں گے بچے بچے ہی ہوتے ہیں اور سیاست کو، کھیل کو سیاست کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ لیجسلیٹر رہا ہے، قانون بنانے والوں میں رہا ہے، اور ایک سینئر پولیٹیشین ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا، اس کی یہ عادت ہی ہے کہ اس سے پہلے اس نے جتندر صاحب کے خلاف بھی ایسے الزامات لگائے اور انہوں نے اس کے خلاف ڈیفرمیشن کیس بھی کیا۔
ادھر آج پردھان منتری نریندر مودی کے آفس میں سٹیٹ منسٹر جیتندر سنگھ نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی نے کشمیر کے حوالے سے جو سپنا دیکھا تھا اسے وہ پورا کر رہے ہیں اور کشمیر کو ترقی کے ہر سطح پر پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو شردھا انہیں اپنے دھرم پہ ہے اور جس کے انوسار انہوں نے کشمیر کے حوالے سے تعمیر و ترقی اور لوگوں کے دل جیتنے کے پریاس کیے ہیں، ان میں اور زیادہ تیزی لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو کاری نئی دہلی نے آرمبھ کیے ہیں اس کا لابھ بہت جلد لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا، تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھارتیہ پردھان منتری نے کشمیری جنتا کے ہت میں یہ سب نرنے لیے ہیں۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ श्रोताओं, अभी आपने हमारा दैनिक कार्यक्रम सुना राजनैतिक चर्चा। इस दैनिक कार्यक्रम के बाद आप हमारे दो साप्ताहिक कार्यक्रम सुनेंगे, नया सवेरा और ईरान भ्रमण। तो पहले पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम नया सवेरा। नया सवेरा।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम नया सवेरा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। आशा है सदा की भांति हमारा ये कार्यक्रम भी आपको पसंद आएगा। स्वाति और मोहम्मद अली कुम्मी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि रूस की एक महिला किस प्रकार मुसलमान हुई।
क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जबकि रूस का काफी क्षेत्र उससे अलग हो चुका है और अलग होने वाले क्षेत्र स्वतंत्र देश बन गए हैं। बहरहाल, ईश्वरीय धर्म इस्लाम सोच विचार और चिंतन मनन का धर्म है। आज दुनिया में जितनी भी प्रगति हो चुकी है वो सब इंसान की सोच का नतीजा है। इस्लाम सदैव समस्त लोगों का चिंतन मनन के लिए आह्वान करता है, यहां तक कि कुछ विषयों के बारे में चिंतन मनन को वो बुद्धिमत्ता की निशानी बताता है, जैसे सृष्टि की रचना के बारे में सोचना, इंसान और दूसरी वस्तुओं की रचना के बारे में सोचना और इसी तरह इन वस्तुओं की रचना करने वाले के बारे में चिंतन मनन करना। पवित्र कुरान के सूरह आले इमरान की आयत नंबर 190 और 191 में हम पढ़ते हैं, जिसमें महान ईश्वर कह रहा है, बेशक जमीन और आसमान के पैदा करने और रात दिन के होने में बुद्धिमान लोगों के लिए निशानियां हैं। ये लोग उठते बैठते और सोते समय ईश्वर को याद करते हैं और जमीन और आसमान की रचना के रहस्यों के बारे में सोचते हैं और कहते हैं, पालनहार, तूने ये सब अकारण पैदा नहीं किया है, तू अकारण व व्यर्थ कार्यों से पवित्र है, तू हमें नरक की आग से बचा।
इसीलिए हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ईश्वर की सृष्टि के बारे में चिंतन मनन करने से बेहतर कोई उपासना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का चिंतन मनन ब्रह्मांड और उसके रचयिता के बारे में इंसान को प्रकाशमयी सोच प्रदान करता है। लुबोयोव एक रूसी महिला है, वह जिज्ञासु लोगों में से एक है। वह ब्रह्मांड और अपने आसपास की घटनाओं के बारे में हमेशा बहुत ही सवाल करती थी। उनका जन्म रूस में हुआ था और वह 11 साल की उम्र में अपनी माँ और बहन के साथ जर्मनी चली गई थी। वह बचपन से सवाल पूछती थी और उनकी इस प्रवृत्ति में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती गई। वे कहती हैं, आसपास देखने से मेरे मन में सवाल उठते थे, जैसे ये ब्रह्मांड कहाँ से आया है, मौसम कैसे बदलते हैं, एक वनस्पति दोबारा कैसे उगती है, पतझड़ के पेड़ों से पत्ते क्यों गिरते हैं, बहार में दोबारा कैसे नए पत्ते निकल आते हैं, नए सेब केले चेरी और नाशपाती आदि कैसे उगते हैं। वे जब इस ब्रह्मांड में मौजूद बहुत ही सूक्ष्म व गूढ़ समन्वय को देखती हैं, तो वह भी उस नतीजे पर पहुंचती है जहां गहराई से सोचने और चिंतन मनन करने वाला इंसान पहुंचता है। वे कहती हैं कि मैं समझ गई कि इन सब चीजों का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है, कोई भी चीज अकारण नहीं है, हर चीज व्यवस्थित और समन्वित है और उन्हें हमारे लिए पैदा किया गया है और बनाया गया है।
महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में बारंबार बल देकर कहा है कि विभिन्न प्रकार की नेमतों और दूसरी चीजों को इंसान के लिए पैदा किया है कि इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। पवित्र कुरान के सूरह लुकमान की 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमान और जमीन में है उसे ईश्वर ने तुम्हारे नियंत्रण व अधिकार में दे दिया है और अत्यधिक विदित और निहित नेमतों को तुम्हें प्रदान कर दिया है।
लुबोयोव की सोच आसमान और जमीन से स्वयं तक पहुंच गई, यानी वह स्वयं के बारे में सोचने लगी। इस संबंध में वह अपना सवाल इस प्रकार करती हैं, मैंने जीवन के बारे में सवाल करना आरंभ किया। मैंने पूछना आरंभ किया कि ये चीजें किस लिए अस्तित्व में आई हैं, या केवल हमारे लिए। 70 से 80 साल के बाद हम मर जाते हैं, और मरने के बाद क्या होता है। इस बारे में ये रूसी महिला अपना आरंभिक विचार बयान करते हुए कहती है, मैं सोचती थी कि हमें दफन किया जाता है और हमारी आत्मा जागती रहती है। हम न देख सकते हैं और न सुन, जमीन के नीचे अंधेरे में पड़े रहते हैं। हमारे आसपास की समस्त चीजें काली हैं और ये चीजें हमेशा हमेशा रहेगी। ये बातें हमारे लिए बहुत ही डरावनी थी, ये बहुत डरावने विचार थे। इन विचारों ने मुझे बहुत दुखी बना दिया था, और ये विचार दूसरे प्रश्नों के मेरे मन में आने के कारण बनते थे कि इसके बाद क्या होगा। अगर हमें मरना ही है तो इस दुनिया में हमारे रहने की वजह और फायदा क्या है।
सारांश ये कि मौत के बाद इंसान का क्या होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। कुछ धर्म मरने के बाद के जीवन का इनकार करते हैं, और उनका मानना है कि मरने के बाद कोई जीवन नहीं है, जबकि कुछ दूसरे धर्मों ने मरने के बाद की दुनिया का चित्रण और उसकी व्याख्या अलग अलग की है। किंतु आसमानी धर्मों, विशेषकर इस्लाम का मानना है कि अगर मरने के बाद की जिंदगी नहीं है तो इस दुनिया का जीवन बेकार है, जबकि वास्तविकता यह है कि मरने के बाद जिंदगी है, और उस जिंदगी में समस्त इंसानों को उनके किए हुए कर्मों का फल दिया जाएगा। उस दुनिया के बारे में इस प्रकार की सोच इंसान की जिंदगी को दिशा प्रदान करती है।
लुबोयोव के सवालों का कोई जवाब नहीं मिला, और वह जानती थी कि केवल महान ईश्वर ही उनकी समस्या के समाधान का द्वार खोल सकता है। इस प्रकार वह अपने पालनहार से इस प्रकार कहती हैं, जब भी सोचने के लिए मेरे पास वक्त होता था तो सीधे मैं ईश्वर से बात करना शुरू कर देती थी। मैं ईश्वर से कहती थी कि अगर तू वास्तव में है तो स्थिति क्यों इस प्रकार है जिसे मैं नहीं समझ रही हूँ। वे इस समस्या से रिहाई पाने और समस्या का समाधान करने के लिए इस्लाम, ईसाई, यहूदी, बौद्ध और हिंदू धर्म का अध्ययन शुरू कर देती हैं।
लुबोयोव इन धर्मों के बारे में किताबें खरीद कर अध्ययन आरंभ कर देती और इन धर्मों की शिक्षाओं की एक दूसरे से तुलना करती हैं। अधिक समय नहीं लगता कि इन धर्मों के अध्ययन से वो ये बात समझ जाती हैं कि इन धर्मों के पास भी उनके सवालों का उचित जवाब नहीं है। वो समझ जाती हैं कि यहूदी धर्म की भांति ईसाई धर्म में भी फेर बदल हो चुका है और वो उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। किंतु इन दो धर्मों का अध्ययन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचती हैं, यद्यपि ईसाई और यहूदी धर्म में भी पवित्र शब्द मौजूद थे, परंतु वे भी अंतिम धर्म यानी इस्लाम की पुष्टि करते थे, यानी वे भी इस बात की शुभ सूचना देते थे कि अंतिम धर्म इस्लाम होगा। इसी प्रकार इन धर्मों ने अपने से पहले वाले धर्मों की पुष्टि की है।
इस प्रकार रूस की यह जिज्ञासु महिला अपने समस्त सवालों का जवाब पवित्र कुरान में पाती और कहती है कि मुझे मेरे सवालों का जवाब कुरान में मिल गया। किंतु यह आसमानी किताब केवल मेरे सवालों का जवाब नहीं देती है, बल्कि उसने मेरी जिंदगी को दिशा प्रदान कर दी इस प्रकार से कि मैंने आभास किया कि इस्लाम धर्म की शिक्षाएं मेरे प्रवृत्ति के अनुसार और पूर्ण समन्वित है। जब लुबोयोव देखती है कि ईश्वरीय धर्म इस्लाम ने पूर्ण रूप से उनके सवालों का जवाब दिया है और उनकी भ्रांतियों को दूर कर दिया है, तो वे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेती हैं। किंतु जब वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेती हैं, तो कई समस्याएं उनके सामने आ जाती है।
अभी उनके अंदर यह जाहिर करने की हिम्मत नहीं है कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इसी तरह उनके अंदर एक प्रतिबद्ध मुसलमान बनकर रहना बहुत कठिन था। ये रूसी महिला अपने जीवन से प्रसन्न नहीं थी। वो कहती हैं कि मैं स्वयं की भत्सना करती थी कि वास्तविकता और सच्चाई जानने के बाद भी मैं उस पर अमल नहीं कर रही हूं। मैंने देखा कि जो भय मेरे अंदर है उसने मुझे आगे बढ़ने से रोक रखा है, क्योंकि जो समस्याएं और कठिनाइयां मेरे सामने थीं उनसे मैं डरती थी और कोई मेरा समर्थक व सहायक भी नहीं था। जब मैंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने का फैसला किया था तो मैं लगभग 18 साल की थी। मैंने इस्लाम धर्म तो स्वीकार कर लिया था, परंतु आगे नहीं बढ़ रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ी थी किंतु अंदर नहीं आई थी। मेरे अंदर इस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं थी। जब आपको ये पता हो कि सही रास्ता कौन है और उसके बावजूद आप उस पर अमल न कर रहे हों, तो ऐसा लगता है कि आप स्वयं से विश्वासघात कर रहे हैं।
बहरहाल लुबोयोव को वास्तविकता का पता चल चुका था, किंतु अभी उनका ईमान उस सीमा तक नहीं पहुंचा था कि महान ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करती और अपने मामलों को उसके हवाले कर देती। किंतु इसी दौरान उनके जीवन में एक अच्छी घटना घटती है। वह इस घटना के बारे में कहती है, मेरी एक सहेली मुसलमान थी, उससे मुझे पता चला कि मस्जिद में कार्यक्रम होने वाला है। मैंने पहला कदम उठाने का फैसला किया। मैं और मेरी सहेली उस कार्यक्रम में गए। वे कार्यक्रम 3 दिनों तक चला। यह वह वक्त था जब मैं पहली बार मस्जिद गई थी और अपनी सहेली की मदद से मैंने स्कार्फ पहना। 3 दिनों तक हम उस मस्जिद में थे और वह हमारे लिए नई दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसका अभी तक मैंने अनुभव नहीं किया था। इससे पहले मैं कभी भी मस्जिद नहीं गई थी। उन 3 दिनों ने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला। जब मैं घर वापस आई तो मेरा दिल स्कार्फ उतारने का नहीं करता था। वह धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम एतिकाफ था जिसमें लुबोयोव ने भाग लिया था।
एतिकाफ वो धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें मुसलमान मर्द और औरतें 3 दिन तक मस्जिद में रहते हैं। इस दौरान वहां वे पवित्र कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अपने पालनहार और ब्रह्मांड के रचयिता से दुआ करते हैं। एतिकाफ भौतिक संसार से दूर होने और नमाज, दुआ और चिंतन मनन आदि करके महान ईश्वर के समीप होने का बेहतरीन अवसर है। एतिकाफ का प्रभाव इतना अधिक है, कभी वो इंसान के अंदर भारी बदलाव का कारण बनता है। इस धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद लुबोयोव के अंदर महान व सर्वसमर्थ ईश्वर पर भरोसे की भावना मजबूत हो गई और उन्होंने महान ईश्वर पर भरोसा करके इस्लामी शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार करार दिया और लोक परलोक में सफल जीवन के मार्ग का चयन किया। दोस्तों, आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है। इजाजत दें, खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
ईरान भ्रमण।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आज भी हम पश्चिमी अज़रबैजान प्रांत के खोए शहर का सफर जारी रखेंगे। मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
पश्चिमी अज़रबैजान प्रांत के सबसे रोचक पर्यटक स्थलों में से एक के रूप में शम्स तबरेजी का मकबरा खोई शहर में स्थित है। शम्स तबरेजी के नाम से मशहूर शम्सुद्दीन मोहम्मद एक बड़े मशहूर सूफी और मौलाना रूम के उस्ताद थे। सन 1248 में उनका निधन हुआ था। सूफीवाद के सबसे अहम स्तंभों में से एक मौलाना रूम उनसे बहुत श्रद्धा रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी अधिकतर गजलें उन्हीं को संबोधित करते हुए कही हैं। बताया ये जाता है कि शम्स तबरेजी ने कूनिया शहर में मौलाना रूमी के पास काफ़ी समय बिताया और अपनी उम्र के अंतिम दिनों में पश्चिमी आज़रबैजान के खुई शहर में चले आए थे और वहीं पर उनका निधन हुआ।
हर साल शम्स तबरेजी के मकबरे पर शम्स तबरेजी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन होता है। इसमें बड़ी संख्या में कला प्रेमी और शम्स के श्रद्धालु भाग लेते हैं। शम्स का मज़ार खुए शहर के केंद्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर इमामजादे नामक मोहल्ले में स्थित है। इस स्थान को आध्यात्मिक दृष्टि से खुए शहर के सबसे अहम स्थानों में से एक कहा जा सकता है। शम्स का मज़ार एक बहुत ही रोचक इमारत है जो अपनी सुंदर वास्तुकला से बड़ी संख्या में सैलानियों और पर्यटकों को आकर्षित करती है।
इस इमारत की मीनार 14 से 15 मीटर ऊंची है, जिसे ईंटों से बनाया गया है। मेढ़ों व भैंसों की सींगों से इसे सजाया गया है। जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उनके मुताबिक शाह इस्माइल सफवी के आदेश पर इस इमारत का निर्माण किया गया था। जंगली मेढ़ों के सींगों मेढ़ों के शिकार में उनकी दक्षता और ताकत का प्रदर्शन करने के लिए इसके मीनार पर इनको लगाया गया है। सन 1998 में आयोजित हुई शम्स कांग्रेस में इस मीनार की मरम्मत का फैसला किया गया और ईरान के इस्लामी संस्कृति मंत्रालय ने यह काम अंजाम दिया। शम्स तबरेजी के मकबरे का मीनार 6वीं सदी हिजरी में बनाया गया था। 3 फरवरी सन 1974 को इसे ईरान की राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में शामिल कर लिया गया। ये मीनार शम्स तबरेजी के मज़ार के आंगन में है और क्षेत्र की बेजोड़ इमारतों में इसकी गणना होती है।
खुए म्यूजियम भी इस शहर के पर्यटन आकर्षणों में से एक है। ये संग्रहालय अपनी प्राचीन व ऐतिहासिक वस्तुओं के संग्रह के साथ देश के सबसे समृद्ध 10 संग्रहालयों में से एक है। इस म्यूजियम में 2000 से अधिक मूल्यवान वस्तुएं रखी हुई हैं। इस म्यूजियम की एक मंजिला इमारत का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, जिसमें 2 बड़े और 1 छोटा हॉल है। संग्रहालय का निर्माण सन 1969 में किया गया था और फिर 1979 में म्यूजियम के विस्तार के उद्देश्य से उसमें 3 छोटे हॉलों की वृद्धि की गई।
खोई म्यूजियम के 4 भाग हैं, जिनमें ऐतिहासिक व प्राचीन वस्तुओं का भाग, मानव शास्त्र का भाग, हस्तलिखित वस्तुओं का भाग और पत्थरों का भाग शामिल है, जिसमें इतिहास से पूर्व के काल, इतिहास के काल और इस्लामी काल जैसे 3 कालों की चीज़ें रखी गई हैं। विभिन्न प्रकार के मिट्टी, चीनी मिट्टी व तांबे के बर्तन, हथियार व बंदूकें, मूल्यवान पत्थर और कुछ हस्तलिखित किताबें इस संग्रहालय की सबसे अहम वस्तुओं में से हैं। इस म्यूजियम में मौजूद सबसे प्राचीन वस्तु के रूप में एक काले रंग का पत्थर है, जो 9000 साल से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है। इस पत्थर को हथियार के रूप में और तीर की नोक पर लगाया जाता था।
खोए के म्यूजियम में जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, उनमें शाह तहमास्प सफवी का शिलालेख, हस्तलिखित किताबें, अशकानी व सासानी काल के सिक्के और सासानी काल में इस्तेमाल होने वाली मोहरों की मिट्टी शामिल हैं। अतीत में मोहरों की मिट्टी किसी चीज़ की गुणवत्ता की गारंटी के तौर पर उस घड़े के मुहाने पर लगाई जाती थी जिसमें वो चीज़ मौजूद होती थी। खुए के संग्रहालय में 5000 साल पहले एसआर दामगान के टीलों में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी के बर्तन और इसी तरह हसनलू टीले में इस्तेमाल होने वाले ग्रे मिट्टी के बर्तन भी मौजूद हैं, जो अधिकतर पहली और दूसरी सहस्त्राब्दी के हैं। अर्दबिल की मिट्टी के हल्के बर्तन, इसी तरह खुए के आसपास के कुछ बर्तन भी यहाँ रखे हुए हैं और इनका संबंध भी 2 से 4 हजार वर्ष पहले से है।
खोई में नगर पालिका की इमारत पश्चिमी आजरबैजान प्रांत की सबसे सुंदर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जिसे अतीत में खोई के शासक और प्रतिष्ठित लोग इस्तेमाल किया करते थे। इसे किला या सरकारी इमारत के नाम से पुकारा जाता था। इस इमारत के निर्माण की तारीख इसके पूर्वी मुख्य द्वार पर लगे हुए शिलालेख के अनुसार सन 1933 है। इस इमारत का बाहरी हिस्सा शायद ईरान में नगर पालिकाओं की इमारतों में सबसे सुंदर हो। इस इमारत के जो स्तंभ हैं और इसमें चूने का जो सुंदर काम किया गया है, उसने इस इमारत को एक विशेष सौंदर्य प्रदान कर दिया है। वास्तुकला पत्थर के काम, चूने के काम और स्तंभों के मिश्रण के साथ ही इस इमारत में की गई पेंटिंग और चित्रकारी ने इसे खोई शहर के मुख्य पर्यटक आकर्षणों में बदल कर रख दिया है।
ये सुंदर इमारत 2 मंजिला है और इसकी एक भूमिगत मंजिल भी है। इसकी वास्तुकला में ईरानी कलाकारों की दक्षता और सौंदर्य बोध को भली भांति देखा जा सकता है। इस इमारत में चूने का जो काम किया गया है, उसने इसके वैभव को कई गुना बढ़ा दिया है। नगर पालिका की इमारत में स्तंभों की जो डिजाइन है, वो प्राचीन रोमियो व यूनानियों की कला की याद दिलाती है। प्रवेश द्वार के सबसे ऊपरी भाग पर एक बड़ा सुंदर गुलदस्ता बना हुआ है, जिसे दोनों तरफ से बेलों से सहारा दिया गया है। ये गुलदस्ता इस इमारत के सिर पर एक सुंदर टोपी की तरह लगता है। गुलदस्ते के निचले हिस्से में एक घड़ी है, जिसके आसपास के हिस्सों को ईंटों से सजाया गया है।
प्रवेश द्वार के बीच के भाग में एक शेर की उकेरी हुई तस्वीर है। ये शेर शक्ति और वैभव का प्रतीक है और सैलानियों का स्वागत करता है। शेर के चेहरे के दोनों ओर दो खताई या लिंगवर्ट लाइनों वाली पेंटिंग्स दिखाई देती है, जिन्होंने इमारत की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं और उसे विशेष वैभव प्रदान किया है। इस्लीमी व खताई लाइनों वाली पेंटिंग्स और सूरज व अंगूर की बेलों के चित्रों के इस्तेमाल ने इमारत के दूसरे भागों को सुंदरता प्रदान की है। ईंट और चूने के सफ़ेद रंग का एक इस्तेमाल और इसी तरह काले रंग के उपयोग ने इस इमारत की सुंदरता को बढ़ा दिया है। इमारत की खिड़कियां लकड़ी की हैं और उनके ऊपर अर्धगोलाकार डिजाइन दिखाई देती है, जिसमें फूलों के चित्रों का प्रयोग किया गया है। इस इमारत का निरीक्षण करने वाले कुछ अर्धगोलाकार सीढ़ियों के माध्यम से इमारत के अंदर पहुंचते हैं। हालिया वर्षों में इस इमारत की मरम्मत की गई है और इसे ईरान की राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में शामिल कर लिया गया है।
दोस्तों, यहीं पर यह भी उचित होगा कि हम आपको खोए के तोहफे व हस्तकला से भी परिचित करा दें। खोए की सबसे अच्छी सौगात सूरजमुखी के फूल के बीज हैं। ईरान में मिलने वाले सूरजमुखी के बीजों में खोए का बीज सबसे अच्छा माना जाता है। इस शहर के अनेक परिवार सूरजमुखी के फूल और उसके बीज से अपना जीवन चलाते हैं। खोए शहर का सूरजमुखी और स्थानीय लौकी का बीज ईरान के बाहर भी निर्यात किया जाता है। खोए की अच्छी सौगातों में से एक शहद भी है। खोए का शहद देश के आंतरिक मंडियों में भी बिकता है और मध्य पूर्व के कई देशों को निर्यात भी किया जाता है। ईरान में मधु उत्पादन में खोए पहले नंबर पर है और पश्चिमी आजरबैजान का 49% और देश का 13% से ज्यादा शहद खोए शहर से आता है।
आपके लिए ये जानना भी उचित होगा कि खोए में गुलाब के सबसे सुगंधित फूल पाए जाते हैं और इस फूल को खोए की एक सौगात के रूप में पहचाना जाता है। इस शहर को गुले मोहम्मदी नामक गुलाब के फूल की एक प्रजाति की पैदावार के सबसे अहम शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ पर गुले मोहम्मदी के 25 हेक्टेयर बाग हैं और हर साल हर हेक्टेयर बाग में से लगभग 800 किलो गुले मोहम्मदी उगाया जाता है। इलाके में खोए के गुले मोहम्मदी के खास ग्राहक हैं क्योंकि ये पूरे क्षेत्र का सबसे सुगंधित फूल माना जाता है। हर साल पश्चिमी आजरबाईजान में गुले मोहम्मदी से लगभग 3.25 लाख लीटर गुलाब जल प्राप्त किया जाता है। खोए में गुले मोहम्मदी के जो फूल हासिल होते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा गुलाब जल निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनका कुछ भाग सुखाकर मुरब्बा बनाने और खाने के लिए भी प्रयोग होता है, जबकि एक अन्य भाग कलियों के रूप में निर्यात किया जाता है।
कालीन की बुनाई भी प्राचीन काल से खोए से प्रचलित है। इस शहर में कालीन की बुनाई का पश्चिमी अजरबैजान प्रांत के अन्य इलाकों पर काफ़ी प्रभाव है और इसके आसपास के ज्यादातर शहरों में तैयार होने वाले कालीन खोए में कालीन की बुनाई की संस्कृति से प्रभावित हैं। खोए में पेंटिंग के रूप में बनाए गए छोटे छोटे कालीनों का स्तर बहुत ऊंचा है और इन्हें आज खोए के हस्तकला उद्योग के रूप में जाना जाता है। खोए में इसी तरह कपड़े की बुनाई, दरी की बुनाई और नमदे की बुनाई जैसे हस्तकला उद्योग भी प्रचलित हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, भी आपने हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सुना और अब सभा के समापन से पूर्व मुख्य समाचार का सारांश एक बार फिर। विदेश मंत्री ने कहा है कि पश्चिम वियना वार्ता में विशिष्टता लेने का प्रयास न करे। ईरान ने घोषणा की है कि 60% ग्रेड तक संवर्धित यूरेनियम का उसका भंडार 25 किलोग्राम तक पहुंच गया है। इसराइली मीडिया ने खबर दी है कि इसराइल 2.5 लाख मिसाइलों के निशाने पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश के वर्तमान राष्ट्रपति ने अमेरिका को पूरी तरह से हंसी का पात्र बना दिया है। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा दोस्तों, इस बारे में आप अपने विचार हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है partstoday.com/hi। तो इसी के साथ हमारी ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज। Thank you.